राहों में अपलक निगाहें गड़ी हैं, धड़कन की तारे उससे जुड़ी है, राहों में अपलक निगाहें
शांति। आज कौन सा दिन है? प्रभु मिलन का। वैसे तो ब्राह्मणों का हर दिन प्रभु मिलन का ही दिन होता है, लेकिन फिर भी विशेष इस दिन पर हम सब पहले से अच्छी तरह से तैयारी करते हैं कि भावा से अपने मन बुद्धि रूपी झोली को अच्छी तरह भर सकें, उसके प्यार की छत्र छाया का अनुभव कर सकें और जो भी कमी कमजोरियां हैं उनको समाप्त करने का सामर्थ्य हमारे में आ सके। हर ब्राह्मण आत्मा अपने अपने क्षमता अनुसार तैयारी करती है विशेष जीवन परिवर्तन के लिए। संगम युग के ये पल बीतते जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बीतते जा रहे हैं। जैसे परसों के मुरली में बाबा ने कहा था ना, एक तारीख से फिर सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता, अब संगम युग भी अंतिम समय चल रहा है। तो ये बहुत अनमोल समय है, हर पल अनमोल है। ये एक एक सेकंड अतिंद्रिय सुख अनुभव करने के लिए हम ब्राह्मणों को विशेष मिला है, जो विशेष परिवर्तन करने का युग है। ये प्रभु मिलन का युग है, यही चढ़ती कला का युग है, उड़ती कला का युग है। तो इस समय को नजरअंदाज न करते हुए कैसे हम बाबा से अच्छी तरह से मिलन मनाएं, क्योंकि अनेक जन्मों से, जन्म जन्मांतर से हम उसको ढूंढते आए। हमारी जो मन की पीड़ा थी, हमारे जो दुख दर्द थे, वास्तव में उसी ने समझे आगे। हमने संसार में बहुत सारे प्रयास किए भक्ति मार्ग में अपने दुख दर्द से मुक्ति के लिए, बहुत भक्ति पाठ पूजा किए, जप तप किए, व्रत किए, तीर्थ किए, लेकिन बाबा ने कहा ना, आज की मुरली में एक भक्ति का फल मैं तुम बच्चों को पहले देता हूं ज्ञान। तो हम वो खुशनसीब आत्माएं हैं जिनकी डायरेक्ट, जिनके ऊपर डायरेक्ट भगवान की नजर पड़ी, स्वयं वो हमारी पालना कर रहा है, स्वयं हमें वो विश्व का आधार मूर्त बनाकर हमारे से विशेष कर्तव्य करवा रहा है। हम ब्राह्मणों पर उसकी कितनी आश है, उसकी हमारे ऊपर कृपा भी है, आश के साथ साथ उस आश को पूर्ण करने के लिए वो हमारे ऊपर आशीर्वाद भी उसका है, उसकी नजर है, उसके वरदानी हस्त हैं। तो आज का दिन विशेष है, इस प्रभु मिलन के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अनेक बार हम बाबा से मिल चुके हैं, समय और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ तो हमें जीवन में विशेष परिवर्तन करना होगा। तो मिलन वास्तव में उसी से होता है जिसके साथ हमारे समानता होती है। अगर हम बाबा से मिलते हैं तो उसके समान बनना पड़ेगा। जो अपने मन के अंदर हीन भावनाएं हैं, अगर हम अभी तक भी हमने उनको स्थान देकर रखा है, उनसे भी अभी तक मन ग्रस्त है, उनको भी अभी हम तक हमने छोड़ा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं मन के कोने में बैठी हैं, तो हमारा उससे सही तरीके से मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी हिसाब किताब है हमारे, या जो भी कमी कमजोरियां हैं, उनको ना देखते हुए अपनी संपूर्ण अवस्था को सामने रखना है। जैसे बाबा ने परसों भी कहा ना, किसी की खामियां नहीं देखनी है, तो किसी की तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें स्वयं की खामियों पर भी इतना चिंतन नहीं करना है। अधिकतर होता ही है, अगर इस ज्ञान मार्ग में हमारी प्रगति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम अपनी मन की कमजोरियों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। जो हमारे पूर्व के संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, जो मन के अंदर बैठे हुए हैं, जिनसे जैसे प्रीत हो चुकी है, बार बार अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो वही सारा दिन जो चिंतन है हमारे चिंता का कारण बन जाता है। तो उस चीज को सामने ना रखते हुए हमें अपनी संपूर्णता को सामने रखना है, क्योंकि बाबा हमेशा हमें कौन सी अवस्था में देखता है, अंतिम जो हमारी संपूर्ण अवस्था है। जितने भी मुरलियां होती हैं तो उसकी शुरुआत बाबा कैसे करते हैं, आज बाप दादा होली अंशों को देख रहे हैं या अपने समान बच्चों को देख रहे हैं, विश्व के आधार मूर्त उधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। तो एक तो हमें स्वयं में विश्वास रखना बहुत अनिवार्य है। बाबा पर विश्वास होना तो सहज हो जाता है, लेकिन दूसरा है स्वयं के ऊपर हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कम होता है, कि जो बाबा ने इतने इतने बड़े सम्मान दिए हैं, उस सम्मान को स्वीकार करना कि वास्तव में सचमुच हैं हम। और हम देखते हैं जिन्होंने सम्मान को स्वीकार किया है उनकी स्थिति, उनका जीवन में परिवर्तन बहुत सहज रूप से हुआ है और बहुत जल्दी वो इस ब्राह्मण पथ पर आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उस सम्मान को स्वीकारा नहीं है। जो बाबा के महावाक्य हैं उनको कहीं हमने जो उचित स्थान नहीं दिया है, उनको अपने संस्कारों में नहीं लाया है, तो उस चीज को स्वीकार करना है, निश्चय करना है, उस पर संपूर्ण हमारा फेथ हो कि सचमुच वो वास्तव में हम हैं। लेकिन वो सम्मान कभी कभी भूल जाता है, जैसे कोई परिस्थिति आती है तो सम्मान तो कोसों दूर रह जाता है और वो परिस्थिति बस मन में बार बार घूमने लगती है, जबकि उन परिस्थितियों से निकलने का बाबा ने हमको मार्ग बताया, तरीका बताया है, उसको ढूंढने के बजाय, उसको अप्लाई करने के बजाय हम समस्या का चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा समस्या का समाधान करो, समस्या का चिंतन, समस्या को पकड़ कर नहीं बैठो। परीक्षा तो आएगी लेकिन उसमें पास होने के लिए बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हैं, तरीके बताए हैं, मेथड बताए हैं, लेकिन वो समय पर तभी याद आएंगे अगर बार बार उनकी स्मृति रखें, उनको स्मृति में रखेंगे, उन पर थोड़ा नजर दौड़ाएंगे, उन पर चिंतन करेंगे। तो जिन बातों पर हमको चिंतन करना है उसको ना करते हुए, जिन पर नहीं करना है अगर उस पर करते तो हमारा मन एक तो पहले से कमजोरी से ग्रस्त था, फिर से और कमजोरियां ऐड होती जाएंगी, उसमें मन फिर से कमजोर होता जाएगा। तो जो भी सम्मान दिए हैं उसको हमको स्वीकार करना है और उस पर अडिग रहना है, उस पर थोड़ा चिंतन करना है, उसको मन समझ लें कि वास्तव में सचमुच हैं हम हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सम्मान की शक्ति है ये धीरे धीरे आत्मा को शक्तिशाली बना देगी। काली बाबा ने कहता ना सेकंड ग्रुप में, स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा। तो हम स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर कितना अधिपत्य, कितना शासन कर रहे हैं, वो तभी कर पाएंगे जब आत्मा शक्तिशाली होगी, आत्मा अपनी सीट पर सेट बैठेगी। जैसे उस दिन था ना प्रदान में कि बाबा दो तख्त दिए हैं तुम बच्चों को, एक तो बिरकटी रूपी तख्त, उस पर बैठेंगे तो क्या होगा, ये कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर मान चलेंगी, और दूसरा है बाप दादा के दिल तख्त। अगर उस दिल तख्त पर बैठेंगे तो बाबा के प्यार का अनुभव करते रहेंगे, बेहद के वर्षे का अनुभव करते रहेंगे। तुम सारा दिन अपने सम्मान रूपी तख्त पर कितना समय बैठते हैं, उसको हम कितना स्मृति में रखते हैं, कितना अप्लाई करते हैं, कितनी उसकी अनुभूति करते हैं, कितना वो अनुभव में लाते हैं, वो समान हमारे संस्कारों में अगर जा रहा है तो उसके परिणाम में हमारा स्वयं के ऊपर पूरा शासन रहेगा और अपने अंदर की हीन भावने दिन प्रतिदिन वो किनारा करती जाएंगी, उनसे मुक्त हो जाएंगे। जो भी मन अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है उनसे मुक्त होता जाएगा। तो ये प्रभु मिलन की बहुत अमूल्य घड़ियां हैं। कितने वर्षों से यज्ञ चल रहा है, 83 ईयर से थोड़ा सा संगम युग है, तो इस समय को भी अगर हम जो इसका अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए, जैसे 4 दिन पहले था ना स्लोगन कि परमानंद का अनुभव कौन कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, स्लोगन था परसों या चौथ, जो संपूर्ण पवित्र है। हाँ जी, हाँ, बाबा के करीब हैं, जो संपूर्ण पवित्र हैं, बाबा के करीब हैं, वो ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत अमूल्य घड़ियां हैं परमानंद अनुभव करने के लिए। तो इस समय को हम नजरअंदाज न करते हुए इस काम को विशेष महत्व रखना है और विशेष अपने ऊपर नजर रखनी है कि कहाँ कहाँ हमारा जो समय है चला जा रहा है, जिस समय को हमको सफल करना चाहिए। ये समय हमें वरदानी समय मिला हुआ है। बाबा ने कहा वरदान में मेहनत नहीं होती, कल की मुरली में था ना, वरदान में मेहनत नहीं होती है। वरदान किस चीज का साधन है, सेफ्टी का साधन है, कल की मुरली में था। और वरदाता याद है, माना वरदान याद है, अर्थात वरदाता याद है। झूले पर रहेंगे वो, मिट्टी में पांव नहीं रखेंगे, झूले से नीचे उतरते तो मिट्टी में जाएंगे तो मैले हो जाएंगे। तो बाबा कहते झूले में खाओ पियो मौज करो, ये सारा वास्तव में अदृश्य पुरुषार्थ है। कौन सा झूला, कैसा झूला, ये तो सारे मन के अंदर अगर हमारा ज्ञान का खजाना है तो उस ज्ञान को ज्ञान के खजाने के अनुसार ही हमारी बुद्धि चित्रित करती रहेगी उसको, और उसी अनुसार हमारे संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएंगे। तो ये स्मृति जो है, स्मृति हमको समर्थ स्मृतियां जो है ये आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमको ये याद रखना है कि समय कौन सा चल रहा है, सोमान का अभ्यास, स्मृतियां कौन कौन सी, बाबा ने स्मृति, बाबा ने कहा तुम ही मेरे कल्प 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 के विजयी बच्चे हो। अब भगवान ने हमको विजय का वरदान दे दिया है और उसके ऊपर भी हमारा फेथ नहीं है, अगर हम कहीं लड़खड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं तो विजय तो हो नहीं रही है, तो अर्थात उसके ज्ञान पर भी फेथ नहीं, उस पर भी फेथ नहीं, तो निश्चय बहुत जरूरी है। तो ये ज्ञान केवल बाबा पर निश्चय नहीं, उसके ज्ञान पर भी निश्चय, उसके परिवार पर भी निश्चय, अपने ऊपर निश्चय, ये जो ड्रामा उसके ऊपर निश्चय, तो सब प्रकार के निश्चय की नींव अगर मजबूत होगी तो ही हम निश्चिंत जीवन जी सकेंगे। काली था ना रंग, अगर होली जो बाबा ने कहा ना बुद्धि दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में रंग हैं तो क्या होगे, निश्चिंत रहेंगे, निश्चित रहेंगे, निश्चय होगा, ज्ञान के रंग में रहेंगे। तो वास्तव में स्मृति को समर्थ बनाने के लिए बाबा के महावाक्य जो हैं उनको आत्मसात करने के बाद ही हम अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बाबा मिलने के लिए कुछ और बातों का हमको अटेंशन रखने की जरूरत है। सारे दिन में हमको अंतर्मुखता, अंतर्मुखी हम कितना रहते हैं, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर ही अंदर कितना विचार सागर मंथन कर रहे हैं उसके महावाक्य हैं, जितना हमारी क्षमता है। और देखा जाता है अगर हम विचार सागर मंथन करना शुरू करते हैं तो सचमुच बाबा नए नए पॉइंट टचिंग कराएगा, अगर हम कदम नहीं रखेंगे तो कैसे होगा फिर वो। तो विचार सागर मंथन करने की आदत डालना भी अति अनिवार्य है ना, विचारों का सागर हमारी बुद्धि में, उसका मंथन करना है, नहीं तो वो खड़ा रहे, विचार अंदर तो हैं सारे, बहुत सारे विचार। अब नए विचार जो हमको रोज मुरली से मिलते हैं उनको हम अगर याद नहीं रखते हैं तो पुराने वाले विचार ही उनका ही मंथन चलता रहता है, और पुराने विचारों का मंथन चलेगा तो परिणाम भी उनका वैसा ही होगा, फिर स्थिति भी डबाडोल होगी। तो विचार सागर मंथन करने की अंतर्मुखी होकर हम कितना आदत डाल रहे हैं, कितना हम एकांत में रह रहे हैं, एकांत अर्थात एक के, जैसे आज के मूल्य तुमको एक बाप से ही सुनना है, एक बाप ही जो सुनाते हैं वही सुनना है, और ऐसे सुनने वाले बच्चे कौन है, ज्ञानी, ज्ञानी बच्चे वही हैं जो एक बाप से सुनते हैं। तो सारा दिन हमको लौकिक संसार में कर्म क्षेत्र पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो क्या भगवान सुना क्या है वो हमको याद रहता है, या वो कर्म क्षेत्र वाली बातें ज्यादा याद रहती हैं, लेकिन जो भगवान सुना के गया वो कम याद रहती हैं। तो पलड़ा फिर संसार का भारी हो जाता है, फिर कहेंगे बाबा ही मेरा संसार है। अब बाबा ही संसार है तो जो बाबा ने सुनाया वो तो याद नहीं रहा, तो संसार कैसे हुआ? तो केवल वो बुद्धि तक सीमित रह जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में वो समा नहीं पाएगा। तो जो बाबा सुना के जाते हैं उसके ऊपर भी हमको नजर दौड़ाएं, तभी कहेंगे हम ज्ञानी हैं, नहीं तो केवल नाम के ज्ञानी रह जाएंगे। इसलिए विचार सागर मंथन करना अति अनिवार्य है। सारे दिन में हम कितना अंतर्मुखी होकर उसके साथ रहते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ मिलना है तो समानता चाहिए, स्वरूप में समानता। अगर हम बाबा से मिलते हैं तो जो उसका स्वरूप है क्या हम उसी स्वरूप में रहकर मिल रहे हैं? जो उसके संस्कार है क्या उन्हीं संस्कारों का हमारे में वो दिग्दर्शन हो रहा है? क्या वो हमें अपने आप में दिखाई दे रहे हैं कि सचमुच वो हैं संस्कार? अगर उसके समान बनना है तो उसके जैसे कर्तव्य हम कर रहे हैं, उसके जैसा हम समय बिता रहे हैं, जहां वो रहता है वहां हम रह रहे हैं, तो वो उसके साथ समानता चाहिए, दोस्ती भी समान वाले में होती है। तो उतना समय हमको क्या जिस अवस्था में वो साक्षी अवस्था में रहता है, क्या हम उस अवस्था पर अचल अडोल रहते हैं? क्योंकि पूरे संसार का खेल चल रहा है, अगर हमारी स्थिति डावाडोल होती है तो कहीं ना कहीं हम साक्षी अवस्था से बेमुख हो जाते हैं, अवस्था वो हमारी वैसी रहती नहीं है। तो स्वयं के प्रति भी साक्षी, औरों के प्रति भी साक्षी, स्वयं के पुरुषार्थ को भी साक्षी होकर देखना है कि सचमुच जितना हमारी प्रगति होनी चाहिए उतना हो रही है या वहीं पर रुके हुए हैं। उसको देख के हमको कहाँ कहाँ हमारे जो विघ्न आ रहे हैं, कहाँ बाधा बनी है, कौन कौन से विचार, कौन कौन से संकल्प जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, या अपनी ही पुरानी आदतें जो हमको जकड़ कर रखी हैं, जिन्होंने हमारे मन को बांध के रखा हुआ है, तो उनसे मुक्ति प्राप्त करने का यही समय है। और बिना भगवान के होने वाला नहीं है, हमारी शक्ति कोई काम नहीं करती। जब तक हम मन से पूर्ण रूप से उसके आगे समर्पित नहीं होंगे, मन की समर्पणता का विशेष महत्व है। तन से समर्पण होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से हमारा समर्पित कितना भाव है? क्योंकि हमने लौकिक में देखा था, यहां आने के बाद पुरुषार्थ और ही अटेंशन से करना पड़ता है, लेकिन लौकिक में अगर हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करते हैं उसका परिणाम बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि बाहर के संसार में रहना है, बाबा को भी ऊपर से नजर तो आता है ना, बच्चे कौन कौन सी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, कितनी कितनी समस्याएं आती हैं, कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो उस संसार में रहकर रहना बाबा की बहुत शक्ति मिलती है। ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हमें याद है सारा दिन हम पूरा बिजी रहते थे एकदम, स्मृतियां तो वो हल्की हल्की रहती हैं ज्ञान की सारे दिन में, लेकिन जैसे इवनिंग में हम रात को 10-15 मिनट भी योग में बैठते थे तो एकदम बॉडी लेस स्टेज होती थी, और ऐसे लगता था जैसे पूरा फुल चार्ज हो गए हैं, जैसे सारे दिन की कसर निकल गई हो। जैसे बाबा कहते ना, अगर तुम 2 मिनट भी सो लेंगे आने वाले टाइम में, 4 मिनट भी सो लेंगे तो ऐसे लगेगा अच्छा हमारी नींद पूरी होगी। तो उसी तरह से हम अपने जीवन में कहां कहां बाबा के साथ, जो कह रहे बाबा ही मेरा संसार है, तो हमारा समर्पण भाव क्या बाबा के प्रति उतना है? बाबा के प्रति हमारा जीवन चल रहा है। कर्म क्षेत्र तो हमको अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन बाबा कहते ट्रस्टी होकर संभालो। 3-4 दिन पहले मूल्य में था ना, ट्रस्टी होकर, गृहस्थी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी है तो हमारा वहां आसक्ति नहीं होगी, अनासक्त भाव रहेगा, कर्म किया और न्यारे होना सहज हो जाएगा। नहीं तो अगर कर्म कॉन्शियस होकर हम करते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है, तो फिर बाद में योग में भी वही ख्याल चलेंगे। इसलिए जो भी हम सेवा करते हैं तो वो न्यारा प्यारा होकर, कर्मयोगी बनकर, कर्ण करावन हार बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय की साधना के बाद ही हम इन सब चीजों से सहज अनुभव कर सकते हैं, संसार के बंधनों से सहज मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो वही बातें बुद्धि में बार बार घूमती रहेंगी, वही बातें बुद्धि में बार बार घूमती, जीवन में वो परिवर्तन सहज रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए इन स्मृतियों को जीवन में रखते हुए हमें आगे बढ़ने का, स्वयं के प्रति सचमुच मैं कितना समर्पण भाव से जीवन जी रहा हूं, कितना उसके प्रति मेरा प्यार है, मेरी लगन है। अगर हमारा उससे प्यार है तो कितना समय मैं उसके साथ में रहता हूं, कितना समय उसके साथ बातचीत कर रहा हूं। तो ये सूक्ष्म कुछ योग के अभ्यास हैं जो हमको करने हैं लंबे समय तक, जब भी हमको मौका मिले तो अलग अलग, चाहे हम सूक्ष्म वतन में, चाहे परम धाम में, चाहे इसी स्थूल वतन को हमको परम धाम बना देना है, इसी स्थूल वतन को हमको सूक्ष्म वतन बना देना है। क्योंकि जितना समय हम उसके साथ रहेंगे उतना समय हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी, और वो ही स्थिति फिर सारा दिन काम भी करती रही धीरे धीरे। तो अपने आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए अपने कर्म क्षेत्र अनुसार अपनी सुविधा अनुसार नए नए दृश्य कुछ क्रिएट करने हैं कि जैसे बाबा से परम धाम में गए, बाबा से अटैच हुए और 10 मिनट जैसे वहीं बैठे रहे, बाबा से शक्ति भरते रहे। क्योंकि लंबे समय उस साधना में, परम धाम की साधना में, इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। अगर इसी संसार को पकड़ के बैठे हैं, यहीं बैठे हुए हैं, तो इसी संसार के ख्याल आते जाएंगे। और जाना तो अभी हमको वापस लौटने का टाइम है, वापस घर जाने का टाइम है। तो इस संसार से हमको सब कुछ समेटने का भी, जितना भी हमारा विस्तार बढ़ता ना दिन प्रतिदिन, बल्कि विस्तार को समेटने का टाइम है अभी। चाहे वो संबंधों में है, चाहे वो कर्म क्षेत्र पे है, तो जितना हम समेटेंगे उतना हम लंबे समय तक ऊपर ठहर पाएंगे, बॉडी से डिटैच एकदम। जैसे मैं आत्मा इस बॉडी से गई और बाबा के सामने बैठी हूँ, या बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, या बाबा की छत्रछाया में बैठी हूँ। जैसे बाबा बीज रूप है, मैं आत्मा भी मास्टर बीज रूप हूँ। जैसे वो संसार को शक्तियां प्रदान कर रहा है, मुझ आत्मा का भी वही कर्तव्य है। मैं आत्मा भी इस संसार को बाबा के साथ मिलकर शक्तियां प्रदान कर रही हूँ, सर्व शक्तियों से इस संसार की आत्माओं को पावन बना रही हूँ। एकमात्र कर्तव्य है बाबा का सारे संसार को पावन बनाना। तो जो उसका कर्तव्य है वो मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो लंबे समय तक परम धाम की अवस्था में टिक कर इस संसार को सकाश देना, इस संसार को भी सकाश देना। या फिर सूक्ष्म वतन में बैठे हैं बाबा के सामने सारे दिन में, वो भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे बाबा वरदान दे रहे, जैसे इंग्लिश में जो कमेंट्री कराई कि बाबा वरदान दे रहे हैं, बाबा का वरदानी हस्त मुझ आत्मा पर है, मुझ फरिश्ते पर है, सारे संसार की आत्माओं को परिवर्तन करने की बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते उठते बैठते बाबा मेरे अंग संग है, निश्चय की बात है। जैसे बाबा मेरी गोद में बैठा हुआ है, निश्चय करना हो बाबा का वरदानी हस्त अभी अभी मेरे ऊपर है, वो मेरे अंग संग है। इतने सारे गीत हैं, वो गीत किस हिसाब से जो बने हुए हैं, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से बने उसी हिसाब से हमें अपने ऊपर लागू करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो धीरे धीरे जीवन में खुशी रहेगी, नशा रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा, तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये संगम युग जो उसमें इस जीने का मजा आएगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन इतने सारे मिलन निकल गए आज तक बाबा के, तो क्या उसी अनुपात में हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, या कहीं ना कहीं जितना चाह रहे हैं उतना नहीं है, कहीं मन में कहीं अपने प्रति कुछ ऐसी खिन्न भाव है, ऐसे अपने अंदर गिल्ट कॉन्शियस है कि जितना होना चाहिए उतना तो हो नहीं पा रहा है। हाँ, वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ के प्रति फुल स्टॉप लगा देना महसूस। हाँ, जो कमी है वो तो महसूस होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी एक आत्म संतुष्टता थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, कि बाबा जो कह रहे हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम, तो उसी अनुपात में हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो ये संगम युग कितना बीत गया, आगे तो देख रहे हैं कैसे, भरोसा तो है नहीं। और कितना परिवर्तन हो रहा है दिन प्रतिदिन संसार में भी, संसार में भी हो रहा है, संसार की गतिविधियां भी देख रहे हैं, ब्राह्मण संसार के भी देख रहे हैं, बाबा के आगमन के तरीके भी देख रहे हैं। तो इन सबको सामने रखते हुए इस समय को हमको अपने हाथ से गवाना नहीं है, बहुत कीमती समय है। तो बाबा के प्यार का अनुभव करने के लिए, क्योंकि हमने कितनी बार उसको पुकारा, तो हमारे सचमुच जो मन की पीड़ा थी, दुख दर्द था, उसने आके समझाया। संसार में आप किसी को भी दुख सुनाते हैं तो वो सुनते का मैं पहले अपना सुनाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा हमारे दुख दर्द को सुनकर सचमुच वो शफा देने के लिए आया हुआ है, और हमने उसको समझने के बजाय संसार के दुख दर्द को भी पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ देने का है। अभी हमारी सगाई उससे हो चुकी है, तो जहां सगाई होती वहां मानना चाहते भी चला जाता है। संसार में तो देखते हैं सगाई होती है तो वो तो केवल मतलब ही सगाई होती है, कोई किसी का नहीं है। आप सब अनुभव होंगे इस चीज के, अगर ना संसार में अगर संबंधों में जाते हैं तो सबको अपना अपना होता है, कोई किसी को लेना देना नहीं पड़ा है, चाहे वो माता पिता है, भाई बहने हैं। ठीक है, सेवा जहां तक हमारी जिम्मेवारी बनती है वो निर्वहन उनका करना है, लेकिन वास्तव में एक बाबा ही संसार है। तो इस उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए आंतरिक साधना चलती रहनी चाहिए कि सचमुच हमारे मन की पीड़ा को उसने हराया कर, उसने हमको सच्चा सुख दिया है, उसने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, कितने प्राप्तियां दी हैं, कितने खजाने दिए हैं, उसकी अविनाशी दुआएं हमारे साथ हैं, उसकी नज़र हमारे साथ है, वो हमें कितना निहाल कर रहा है, अपनी नज़र से निहाल कर रहा है, वो कितना छत्रछाया बनकर हमारे साथ साथ चल रहा है, कैसे हम उसकी छत्रछाया में एकदम सुरक्षित हैं। तो ये सारे उपकार जिस जो उसने हमारे ऊपर किए हैं, क्या सारा दिन हम कोई स्मृति में रहते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो, क्या क्या तुम्हें मिला, तुम्हें कौन मिला है, स्वयं भगवान आकर पालना कर रहा है। वो रोज हमारी खुश खराबत पूछता है, वो रोज चार पेज का पत्र लेकर हमको अच्छी अच्छी शिक्षा देकर हमको श्रृंगार कर रहा है। कल भी था ना मुरली में श्रृंगार, तुम बाप दादा के घर का मधुबन का श्रृंगार हो, किसके लिए बोला था? हाँ, विदेशियों के लिए। तो हम बाबा के घर का श्रृंगार हैं, भगवान के गले का श्रृंगार है, उसके घर का श्रृंगार है, कितनी बड़ी बात है। तो क्या जो वो श्रृंगार करके जाता है उस श्रृंगार के अनुरूप हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या केवल विस्मृति रह जाता है श्रृंगार करके गया, नहीं तो फिर वो मिट्टी में लोटपोट हो गए, फिर वो ही बन जाएंगे। तो वो तो पहले भी थे, लेकिन अब वो हमको ज्ञान रत्न से श्रृंगार रहा है सारे दिन में। वो ज्ञान रत्न का कितने हमारी बुद्धि में ठहरे हैं, कितना हम उनको जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस स्मृति, जहां स्मृति है तो समर्थ ही स्वतः बनेगी। तो हमें अपने मन को जो है छोटी छोटी बातों में उलझाना नहीं है, क्योंकि बातें तो आएंगी आएंगी, लेकिन जो हमको कर्तव्य मिले हैं उनके प्रति सजग रहते हुए सारे दिन में अपना टाइम टेबल निश्चित करना है, है ना। बहुत बाचा में आने की बजाय अपने अंदर ही चिंतन करना है, बाबा से बातचीत करने के लिए हमको दिन लंबे समय तक खाली योग, अगर योग में हम साइलेंस में बैठे जाते हैं तो भी मन जैसे बोर होने लगते, तो अंदर अंदर बाबा से बातें करनी है। कितना सारा बाबा से के साथ हम लंबे समय तक बात कर सकते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव करना, कितने बाबा से, अगर बाबा हमारा पिता है तो पिता के साथ जो हमारे संबंध हैं क्या उसी संबंध के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो बाबा के साथ पिता है तो उसके साथ वैसे बातें करें कि सचमुच बाबा आपने हमारे पर कितना उपकार किया। वो संसार वाला पिता क्या करता है और इस पिता ने आके हमको क्या बनाया, वो भिखारी बनने का वर्षा देता है, ये तो निर्भिकारी बनने का। काली था ना मुरली में कि आजकल इस संसार के साधन जो है 5 साल के बच्चे को भी भिखारी बना देते हैं, बताओ 82 की बात ये है। उसमें शायद टीवी संस्कृति का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो बाबा ने हम सबको कितना विकारों की अग्नि से जलते हुए जो निकाला है हम सबको, तो उसने हमारी आत्मा की प्यास को बुझाया, जो आत्मा तड़फ रही थी उसको, हमारी तड़फन को समाप्त किया है। तो कितना हमारे ऊपर उसका उपकार है। तो जो पारलौकिक पिता है उसने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, कितने हमारे ऊपर कृपा की आशीर्वाद दिया है, तो ये उपकार उसके सामने रखने। अगर वो हमारी माता है तो माँ पर कैसे पालना कर रही है, रोज हमको कैसे ज्ञान स्नान कराती है, कैसे श्रृंगार करती है। अगर वो हमारा दोस्त है तो दोस्त बनकर कैसे वो साथ साथ रहता है। अगर वो हमारा सखा है, दोस्त है, अगर वो हमारी साजन है तो साजन अगर वो है तो मैं उसकी सजनी किस तरीके से चल रही हूँ, उसके साथ क्या हमारा वो पूरा समर्पणता का भाव है, उसके साथ बेवफा तो नहीं हो रहे हैं, वफादार हैं। तो ये सारे संबंधों का अनुभव खुद ही हमको नए नए तरीके से इस प्रभु मिलन का सुख अनुभव करने के लिए कुछ तो नई युक्तियां रचनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हम सुनते हैं दूसरों की क्लास व्लास सुनेंगे, लेकिन जो अपना ज्ञान का हम चिंतन करेंगे उसका नशा लग रहेगा, और उस स्वयं के ज्ञान का चिंतन हमारी बुद्धि में रहेगा, दूसरों का ज्ञान थोड़ा बहुत ही ठहरेगा, ज्यादा नहीं ठहरेगा, लेकिन हाँ जी वो कान तक रह जाएगा और दूसरे वाला वो अंदर चला जाएगा। नहीं तो हम सुनते हैं जी वो क्लास के समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन सारे दिन फिर भी। तो हमको इन क्लासों का सहारा तो लेना है, लेकिन खुद ही किसी के कंधे पर अपना ये नहीं रखना है, अपना मुंह नहीं है, अपना सिर किसी के कंधे पर रखने की आदत नहीं डालनी है। खुद ही हमको अपने बैसाखी, हाँ अपनी बैसाखियां खुद ही तैयार करनी है। दूसरे की बैसाखियों का सहारा लेकर कब तक चलेंगे, क्योंकि अकेले आए अकेले जाना, खुद के पांव पर चलना है। बैसाखी हो नहीं, जो सहारे पकड़ने वाली होती है ना बैसाखी, जो यहां रख के चलते हैं ना, लकड़ी को बैसाखी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरे के बैसाखियों के सहारे हमारा जीवन बीत रहा हो। तो जो बाबा का ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा बैठता जाए, उसी का सारे दिन में चिंतन, मुरली को अलग अलग तरीके से हम उस पर गौर करें, नजर करें कि क्या क्या बाबा ने कहा, उसी अनुसार हमारा जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो प्रभु मिलन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले है कि सारा दिन अंतर्मुखी कितना रहते हैं। अंतर्मुखी ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल बोलना नहीं है, नहीं, अगर हम किसी को जरूरत है हमारी बोलने को, हम नहीं बोल रहे हैं तो सामने वाला और ही दुखी हो जाएगा बेचारा, और ही हमारे दुआएं मिलने के लिए बददुआएं मिलेगी। तो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है भी हमको समझ चाहिए। जैसे देख रहे हैं कई कोई कोई ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो इशारे से करेंगे, और बेचारे वहां इतने बिजी होते हैं उसका इशारा कहां तक समझेंगे। तो उसको जहां बोलने की जरूरत है वहां हमको बोलना है, कम से कम बोलना है, टू मच बाचा में नहीं आना है। तो वो तो एक तो मुख की वाणी है, एक है मन की वाणी। मन से भी हमारे कम संकल्प, इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है जो बच्चों के संकल्प बहुत कम हो जाते हैं वही विश्व कल्याण के कार्य में विशेष मददगार बनते हैं। तो संकल्पों की बचत, संकल्पों से मौन, व्यर्थ संकल्पों से मौन। शक्तिशाली संकल्प, समर संकल्प तो चलने चाहिए, लेकिन व्यर्थ संकल्पों से मौन करना है। तो ये देखना कि अंतर्मुखी होकर हम सारे दिन में कितना एकांत में विचरण कर रहे हैं, बाबा के साथ सर्वसुंदों का अनुभव कर पा रहे हैं, सारा दिन उसके साथ मिलन मनाना है तो उसके अनुसार कैसे चल रहे हैं, उसके जैसा स्वरूप बनकर कैसे रह रहे हैं, वो जैसे जिस कॉन्शियस में रहते हैं हम भी क्या उसी कॉन्शियस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, उसी के अनुसार चमकता हुआ अपने को मूल वतन में अनुभव करते हैं। जैसे वो स्टार है मैं भी आत्मा वहां स्टार चमक कर रह रही हूं, जैसे वो बीज रूप है मैं भी सृष्टि का इस सृष्टि का मास्टर बीज रूप हूं, तो क्या मुझ आत्मा से भी संसार की सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर जाती जा रही हैं, सर्व शक्तियों को वाइब्रेशन फैला रहा हूं, क्योंकि जो उसका कर्तव्य है उसी अनुसार मैं चल रहा हूं। तो उसके समान रहेंगे तो ही हम मिलन का अनुभव कर पाएंगे, जो वो जैसा है उसी के अनुसार मुझे रहना, जो उसके संस्कार है वो ही मेरे संस्कार, जो उसका स्वरूप है वो ही मेरा स्वरूप है, तो उसी के अनुसार हम आकाश दे रहे हैं, उसी के अनुसार हम चल पा रहे हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं, जो श्रीमत दे रहा है उसको हम जीवन में ढाल रहे हैं। तो अंतर्मुखता के साथ साथ एकांत, और इसका परिणाम है मौन करने की जरूरत नहीं है, मौन वास्तव में अपना आप हो जाता है। मौन माना हमारे व्यर्थ से वैराग्य अपने आप ही पैदा हो जाएगा। जिसके संस्कार हमको अच्छे नहीं लगते हैं उसके साथ हम नहीं बोलते हैं, तो वहां माना मौन है, मौन की अवस्था ना, तो मन मौन हमारा स्वतः आता जाएगा दिन प्रतिदिन। और सबको साक्षी होकर देखना, साक्षी होकर देखने का वास्तव में अब विशेष समय चल रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा सबके संस्कार स्वभाव तो अपने अपने अपना अपना पार्ट है और इतने निकलेंगे। और सबसे जो कड़ा पेपर है हम देखते हैं स्वयं के संस्कारों का होता है, दूसरों को साक्षी होना होकर देखना फिर भी थोड़ा सहज लगता है, लेकिन जब स्वयं के संस्कार जो पेपर, कड़े पेपर आने वाले हैं, प्रकृति का पेपर, संबंधों का पेपर, या फिर विकारों का पेपर, दूसरी आत्माओं का पेपर, समस्याओं का, सांसारिक परिस्थितियों का, इनकम टैक्स जो 12 पेपर कई बाबा ने कई बार मुरली ने बताए हुए हैं, तो सबसे कड़ा पेपर जो देखा गया स्वयं के संस्कारों का आता है। संस्कार ऐसे तूफान मचाते हैं कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम आदत डालेंगे तो वास्तव में मुश्किल नहीं है, सहज है, क्योंकि आदत की बात है। तो स्वयं के संस्कारों को भी हमको साक्षी होकर देखना, उनको परिवर्तन करना, केवल देखना नहीं है, उनको परिवर्तन करने के अंदर में एक फीलिंग चाहिए, महसूसता चाहिए, महसूसता की शक्ति जब तक नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो हम स्वयं को भी देखना कितना हम उसको परिवर्तन कर पा रहे हैं, तो साक्षी अवस्था का अभ्यास। और नेक्स्ट है कि बाहर हमको परम धाम में रहकर बाबा के साथ लंबे समय तक अपना समय बिताना है, क्योंकि हमको वहां वापस लौटना अभी, तो वापस लौटने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है ये हमको खुद ही चिंतन करना है, सारे प्रकार के विस्तार को समेटना, केवल निमित्त मात्र हम जिम्मेवारियों को संसार में निभा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पति है या पत्नी है, कोई भी है, माता पिता है, केवल निमित्त मात्र हैं, उन जिम्मेवारियों को निभाया और एकदम डिटैच हो गए। और ऐसा नहीं है जिम्मेवारियों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आएंगी क्योंकि हमने ही बीज बोए हुए हैं, ये नहीं हम कह सकते कि सामने वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है तभी तो वो कर रहा है, क्योंकि बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसको भी हमको स्वीकार करना है, उससे किनारा नहीं करना है, और हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, कहते ना ये भी बीत जाएगा, ये भी हमको याद रखना है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, वो बीत जाएगा, समस्या आई है तो हमको खुशी खुशी उसको क्रॉस करके जैसे भी करके उसको पार करके उसका समाधान करना है, उससे डरना नहीं है। अगर हम एक बार समस्या से डर गए, किनारा करें, तो अगली बार वो 10 गुना बड़ी होकर हमारे सामने आएगी। तो अगर पहले हम जब शक्तिशाली नहीं है समस्या, पहले हम उसको क्रॉस कर लें, तो फिर आने वाले टाइम में हमको जो समस्या अगर आएंगी भी तो उनका सामना करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में होता है, तो फिर उनको पार करना मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा। तो समस्याएं बाबा ने कहा ना एक जैसे क्या है, मरी हुई चींटी के समान है, एक तो मनोरंजन है, खेल है, तो समस्याएं भी खेल लगेंगी। तो जो भी समस्या आती है उनसे किनारा नहीं करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो ये है कि लंबे समय तक परम धाम में रहकर बाबा से अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेनी, बाबा कहते हैं ना सवेरे सवेरे आत्मा में इतना प्यार भर लो, इतना परमात्म प्यार भर लो जितना कोई सारे दिन में कोई आकर्षित ना कर सके। अगर कोई हमको देखता भी है तो उसको भी जैसे बाबा की कोई ना कोई पॉइंट स्मृति में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे हमको देखने से उसके ख्याल दूसरे दूसरे बदलने लगे। तो सारे दिन का आधार हमारा अमृत वेला है। अमृत वेले हम थोड़ा सा भी योग करते हैं तो एकदम शक्तिशाली पावरफुल होके अपने आप को खुद फुल चार्ज कर लेना है, और सारे दिन में हमको उस अमृत वेले की स्मृति रखनी है। ऐसा नहीं कि हमने अमृत वेला कर लिया और फिर भूल गए, उसी स्मृति को साथ साथ लेकर चलना है कि जो हमने अमृत वेले बाबा के साथ अनुभव किया है, सर्व संबंधों का अनुभव किया है या साकाश देने का अनुभव किया है, जो भी परिक्रमा की है वो सारे दिन में स्मृति में रखना है। नहीं तो अगर वो टाइम अगर भूल जाते हैं तो सारा दिन फिर दूसरे कर्म हमारे पर हावी हो जाते हैं। तो स्मृतियां हमको अमृत वेले की, ये हमारा फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को सारे दिन में रखने से। आज की मुरली में भी है ना, क्या है नींव, एकता की नींव क्या है ना जी, हाँ विशालता और उदारता ही एकता की नींव है। तो ये हमारा अमृत वेला जैसे नींव है, इस नींव को सारे दिन में मजबूत करते रहना, करते रहना, करते रहना। नहीं तो खाली हमने नींव डाल दी और दिन में हमने ऊपर ईंटें कौन सी लगा दी, दूसरे प्रकार की ईंटें लगा दी, तो वो नींव दब जाएगी। तो सारे दिन में हम उस नीम के ऊपर कौन सी दीवार बना रहे हैं, कौन से संकल्पों की दीवार खड़ी हो रही है दिन पर दिन, और देखेंगे रात को शाम को देखेंगे तो संकल्प तो दूसरे आ गए और अमृत वेले की दीवार नीचे वो नीम दब गई। तो सारे दिन में हमको अमृत वेले जैसा जो स्थिति है वो बना के रखने का प्रयास करना है, बार बार उसको स्मृति स्मृति में। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति का जल बार बार देते रहो। तो यह है कि अमृत वेला हमारा फाउंडेशन है, तो उस फाउंडेशन को भी हमको पक्का करते हुए सारे दिन में उस पर बार बार फोकस करना है। तो लंबे समय तक परम धाम या मूल वतन या सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में हम बाबा के साथ कितना वरदानों का अनुभव कर रहे हैं, वो वरदान हमारे ऊपर बरसे हैं, निरंतर उनको देखना है। माने जैसे उनको स्थूल रूप देना है, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, तो मैं परम धाम में बाबा स्वीट का पहाड़ है, मैं भी उसके साथ में चिपका हुआ। काली था ना मुरली, बाबा से आप क्या करो, चटके रहो, चींटी बन के चटके रहो। हाँ तो कैसे बन के है कि उससे चटके रहो, माना अर्थात उसका चिंतन करते रहो, उससे खेल पाल करते रहो, उससे मौज बनाते रहो, उससे बात करते चलते रहो, रोरन करते रहो। तो सारी बातें हमको खुद ही क्रिएट करना है, उसको छोड़े ही नहीं, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो तो ऐसे कहाँ छोड़ेगा, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद थोड़ा सा तो टाइम मिला है। माँ बाप के बच्चे गुम हो जाते उनको कितनी खुशी होती, तो सचमुच बाबा को हमें देख के कितनी खुशी होती होगी, क्योंकि थोड़ा सा समय ही हम रहेंगे फिर उतराएंगे नीचे। तो हमारे से बाबा कितना प्यार करता है, संसार की इतनी आत्माओं में से केवल हम गिनी चुनी आत्माएं जिनको बाबा प्यार कर रहा है, शिक्षा से श्रृंगार है, इतने हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, प्राप्तियों से संपन्न कर रहा है, खजाने बांट रहा है। तो सारे दिन में हमको ये देखना है कि सचमुच बाबा का हमारे ऊपर कितना प्यार है, कितना उपकार है, कितने उसकी हमारे ऊपर आशीर्वाद मेहरबानियाँ हैं। तो वो देखना है कि अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जो हम प्रभु मिलन के जो दिन है सचमुच बीतते जा रहे हैं, अभी इतने टर्न हो गए, एक टर्न और रह गया है, अब ये भी अव्यक्त में अव्यक्त टर्न है, आने वाले समय में क्या होगा वो कुछ कह नहीं सकते। तो ये कुछ एक बातें थी प्रभु मिलन के लिए हमको क्या क्या करना, खुद ही एक अपना चिंतन ध्यान करना है, क्योंकि जो सुनाना है तो थोड़ा बहुत याद रहेगा और थोड़ी देर तक याद रहेगा, क्योंकि जो सुनाने वाले जितना समय करता है उतना सामने वाला इफेक्ट पड़ता है, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। नहीं तो उसी के ऊपर आधार, अगर वो क्लास कराने वाला या नहीं होंगे, है सूरज भाई क्लास कराने वाले अगर ज्ञानी होंगे तो क्या होगा, बोलेगा आज तो क्लास होने प्रभु मिलन होगा ही नहीं, खुद को क्लास करानी जो, क्योंकि उन आत्माओं ने इतनी मेहनत की है कि उनके जीवन में परिवर्तन जो हुआ है पुरुषार्थ किया उन्होंने, तभी उनसे जीवन से झलकता है। तो वो ही हमारे लिए सब प्रेरणा स्रोत है, दादियाँ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने जो पुरुषार्थ अंदर ही अंदर पुरुषार्थ किया, अपना अंदर में कूट कूट के भरा पड़ा है सब, तो हमको स्वयं उनका फायदा लेते हुए इस ब्राह्मण जीवन का पूरा जो है प्रभु मिलन का ये जो अनमोल समय है, अमूल्य घड़ी है, इसका हमको पूरा पूरा फायदा लेना है। बाकी प्रभु मिलन के लिए और क्या विशेष अटेंशन देने की जरूरत हो सकती है, आप बताइए अभी प्रभु मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और पिछले प्रभु मिलन के जो दिन हैं, जो बाबा से हम पहले मिले हुए हैं, सारा दिन, हाँ सारा दिन उसको बार बार स्मृति में लाएं कि बाबा के सामने बैठे हुए हैं, मौन में रहे, बाबा का आह्वान बार बार, ये बहुत अच्छी बात है, बार बार उसका आह्वान करना। तो आह्वान करना एक बात, उसमें और ये भी हो सकती है, तो माना हमने उसको छोड़ा कि अगर आह्वान करना पड़ रहा है तो बात तो ठीक है, आह्वान तो करना जरूरी, हाँ अव्यवस्था बनी नहीं है, तो बार बार उसका आह्वान करना, जब अवस्था बन जाएगी तो फिर करने की जरूरत नहीं है। हाँ ना बिसरो नैत को। तो बार बार जैसे बहन जी कह रहे हैं बाबा ऊपर से आ रहे हैं, जैसे परम धाम से गीत भी है ना, जगमग करती ज्योति परम धाम से, तो जैसे उतर रही है और मुझ आत्मा को यहां से इस बॉडी से लेकर जा रही है वापस, इस बॉडी से मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, अपने घर स्वीट होम जा रही हूँ। और क्या अभ्यास करेंगे? जैसे दादी बतन में जाती है ऐसे अभी बाबा को बुलाने के लिए जाए ऊपर से। और बाबा से पूछना कि आज क्या सुनाने वाले आप। नहीं बात ये भी ठीक है, पहले कई बार ऐसे होता था आज बाबा क्या सुनाएंगे, थोड़ा अपना गेस्ट होता था ना, क्योंकि जो बाप के विचार हैं बच्चों के विचार तो मिलेंगे ना धीरे धीरे। हाँ तो कोई कोई शब्द तो आ जाता है ऐसे, तो ये भी अच्छी एक बाबा से संबंध रखने का, उससे बुद्धि योग जोड़ने का तरीका है कि बाबा आज आप क्या सुनाने वाले हैं। और हाँ बिल्कुल, तो संसार में अगर कोई वीआईपी व्यक्ति महान व्यक्ति हो तो अगर वो हमारे घर में आ जाए तो कैसे हम रहते हैं, एकदम टेंशन में रहते हैं, कितना हमको फक्र रहता है, एक अपना नशा रहता है। तो आज हमारे घर में कौन आ रहा है? भगवान आ रहा है, वीआईपी, संसार का सबसे बड़ा वीआईपी है, वो यहाँ आ रहा है। किस लिए आ रहा है? हमको जीते जी मारने के लिए आ रहा है। हाँ जीते जी, हाँ नहीं वो ही तो मरना है ना, जीते जी मरना, वास्तव में जीते जी मरने का तो सुख है। और दूसरी बात, इतने बार बाबा को हमने बुलाया, अभी कम से कम उसका भी तो सुनना, वापस तो जाना पड़ेगा ना। आज सवेरे जो गीत वाला मिला है वतन का निमंत्रण, तो वापस तो चलना पड़ेगा कि यहीं कितना। बाबा ने कहा मैं इस रावण राज्य में आता हूँ, तो क्या बाबा को हम अपने इस रावण राज्य में बुलाते रहेंगे बार बार? तो वापस तो लौटना है ना। तो बाबा जैसे हमको ले जाने आया हुआ है तो उसकी भी सुननी है, जाने की तैयारी करनी है। और मिलन के लिए क्या रखें? पांडव उनसे चक्कर लगा के नीचे जाते हैं। हाँ जी, हाँ मन जैसे बाबा के दिन में हम कितना अटेंशन रखते हैं, ऐसे हर दिन में हमको अटेंशन चाहिए, और ही उससे अटेंशन हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बस आज मिल लिया पूरा हो गया काम, फिर वही कर्म क्षेत्र के जैसे कि तैसे, नहीं, दिन प्रतिदिन हमारी स्थिति जो बेहतर बनती जानी चाहिए। हर काम में उसको इन्वॉल्व करना, वो साथी है, केवल ये संगम युग है जिसमें वो हमारा साथ निभा रहा है। फिर तो बाबा सो जाएगा ऊपर, फिर वापस, फिर वही 5,000 साल बाद हम बुलाएंगे। तो अभी है वास्तव में सारे क्लब का जो रिकॉर्डिंग है अभी चल रही है, जो अभी भर रहे हैं, जैसे कल के मूल्य में यादगार तुम बच्चों का बना हुआ दिलवाड़ा, हाँ तो जितना हम याद रखेंगे उतना यादगार बनेगा। हाँ जी, जितना याद करेंगे उतना, तो कितना याद करना? पूरा पूरा याद करना उसको, 24 घंटे में से 25 घंटे याद करना। और क्या टेंशन रखेंगे? अशरीरी बनने का अभ्यास, हाँ अशरीरी बनने का अभ्यास, फरिश्ता बनकर सबको साकाश देने का, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? शांति की जरूरत है। तो हमको जितने ज्यादा हो सके सारे दिन में साकाश देना बहुत जरूरी है। आत्माएं तड़प रही है बेचारी संसार में, कितने दुख दर्द में करा रही हैं उनकी पीड़ाएं। ये तो हम जब कर्म क्षेत्र संसार में निकलते, आप लोग तो सब जो घर में रहते पता ही उनको, लेकिन कैसे कैसे बेचारे जाते हैं, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों में तो है ना, अपना जो ब्राह्मण परिवार भी, वो भी कितनी परिस्थितियों में उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन करना तो है ही है, अब उसको हम किनारा नहीं कर सकते, करना तो है ही सामना। तो शक्तिशाली बनना है, शेरनी शक्ति बनना है, ऐसे नहीं। काल एक माता जी हमको अनुभव सुना रहे थे कि घर में कितनी परिस्थितियां आती हैं, कितनी परिस्थितियां, उनके बेटे भी ज्ञान में, वो भी ज्ञान में हैं, और उनका बेटा भी, अच्छा बेटा ज्ञान में नहीं लेकिन बहुत सहयोगी है, लेकिन बहू ने उनके, बहू भी ठीक ठाक चलती थी, लेकिन कहीं केस कर दिया बहू ने अपने आप ही, उसको मन में नहीं चित्त में नहीं कि दहेज के लिए मुझे तंग करते हैं, और इन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी भी अपने पास ही रख दी है। तो इतनी समस्याएं आती है, और कब बहू के प्रति उनके मन में था ही कुछ नहीं ऐसा, लेकिन बहू ने पता नहीं क्यों केस कर दिया। तो फिर बाद में देखा, वो केस करने के बाद वो जब बहू ने बोला कि मेरी ज्वेलरी ले ली इन्होंने, तो एक फंक्शन में गई थी बहू ने, वहां ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो उन्होंने वो सीढ़ी बनी हुई थी वहां, तो सीढ़ी में देखा ये ज्वेलरी अभी कहां से आई, अगर हमने ले ली तो कहां से आई। तो कैसे कैसे प्रति बिना मतलब के सबको FIR दर्ज करा दी उसमें, ना चाहते ही हिसाब किताब आ गया, कोई लेना नहीं देना नहीं है बिजी रहने के लिए। तो ये हिसाब किताब तो आएंगे नहीं, बेचारे कुछ किया नहीं है, हालांकि उनको आस पड़ोस वाले भी बहुत अच्छा मानते कि जैसे ये तो, हाँ पिछले जन्म में किया होगा, तो उनको आस पड़ोस वाले जानते हैं कि बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन बहू ने पता नहीं कैसे कर दिया उनको, माना कब किसका, जो बाबा कहते हैं कि जिसको लंबे समय से हमका अपना मित्र मानने वो शत्रु बन जाएगा एक दिन, और जिसको शत्रु मानते वो हमारा मित्र बन जाएगा, तो किस समय कौन सी परिस्थितियां आती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए चाहे वो ब्राह्मण संसार में चाहे बाहर के संसार में, तो ये तो होना ही है। तो अपने आप को हर परिस्थिति में तैयार, उसका सामना करने के लिए सक्षम रखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, तो हम उससे पार हो सकते हैं। तो ये ड्रामा हो एक्रो चल रहा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं हमारे द्वारा ही पहले पूर्व जन्मों में या इस जन्म में बीज बोए हुए हैं, तभी तो हमारे सामने आ रहे हैं। तो खुशी खुशी उनको स्वीकार करना है, चुप्तु करना है, आगे बढ़ते जाना है। और कोई प्रभु मिलन के लिए विशेष टोली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम बाबा से मिलने मनाने का बहुत अच्छा तरीका है कमेंट्री लिखनी है, वो कमेंट्री लिखते लिखते या पत्र लिखते लिखते मन बुद्धि इतना एकाग्र हो जाता है कि सारी कर्मिंद्रियां एकदम एकाग्र हो जाती हैं, और वो सारी शक्ति कर्मिंद्र के अंदर जाने लगती है, कर्मिंद्र एकदम कंट्रोल में आने लगती हैं। तो लिखने का बहुत अच्छा काम है, चिंतन करने का बहुत अच्छी एक आदत डालनी चाहिए, जिससे हम अपनी स्थिति को और शक्तिशाली बना सकते हैं। जितना धीरे धीरे चिंतन है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमको सोचना है कि 10 पेज लिखने, बोले 10 ही लाइनें लिखें, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा चिंतन, अपने आप बुद्धि प्रखर होती जाएगी, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे ने मेरे प्रति थोड़ा मेरी बात सुनी है, तो मैं इसको क्यों नहीं मदद करूंगा। तो ये भी है कि चिंतन करना बहुत अच्छी बात है, उसको पत्र लिखना है, हाँ कैसे बात करनी है बाबा वो खुद सिखाते हैं, ओहो बाबा आप कितने मीठे हो, आप कितने कमाल के हो, आपने मेरे पर कितने उपकार किए, मुझे कितना प्यार करते हो, संसार में काम बेकारों की अग्नि में जल रहे थे, आपने कहा मुझे पलकों में बिठा लिया, आप मुझे कैसे परमधाम लेकर जाते हो, कैसे विषय की परिक्रमा कराते हो, आप मेरे कितने मीठे प्यारे साजन हो, तो इस कितनी बातें कर सकते हैं। और ये सब करते करते मन बुद्धि पूरा एकाग्र हो जाता है, और सारी शक्ति वो से जैसे बाबा, क्योंकि सारे बाकी महाबा के बाबा के हैं, और वो महाबा के जैसे हमारे संस्कारों में बसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।